you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit. I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में लगभग 50,000 ऑस्ट्रेलियाई छात्र वीजा केसेस समीक्षा यानी रिव्यू की प्रतीक्षा में हैं। नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं भव्या पांडे के साथ और इस अंश में हम ऑस्ट्रेलिया में छात्र वीजा आवेदनों के बढ़ते बैकलॉग पर बातचीत करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू ट्रिब्यूनल के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार माइकल हॉकिंस ने सीनेट एस्टिमेट्स को बताया है कि ट्रिब्यूनल की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए और अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है।
Okay, well, there's not a lot of triaging going on because we simply don't have the resources to attack the study visa cohort. Of the 97.9 FTE that we're looking for, the vast majority of those will be dedicated to student and protection visas.
दरअसल, वीजा आवेदकों का प्रबंधन गृह मंत्रालय यानी होम अफेयर्स द्वारा किया जाता है, लेकिन कभी कभी उन्हें समीक्षा के लिए ट्रिब्यूनल के पास भी भेज दिया जाता है। हॉकिंस का कहना है कि अभी फिलहाल ट्रिब्यूनल के पास सभी एप्लीकेशंस को जल्द से जल्द प्रोसेस करने के लिए पर्याप्त साधन ही नहीं है। सीनेट के अनुमानों के अनुसार पिछली तिमाही में जिन छात्र वीजा मामलों में फैसला बदला गया उनकी संख्या असाधारण रूप से कहीं ज्यादा थी।
So our student visa caseload operates 44%, but it's usually between 44 and 50% get remitted. About 30% get withdrawn. And that's through our triage process that the Senator referred to, and 20% get affirmed. It's extraordinarily high and probably comparable only to the partner and family visa.
आंकड़ों की माने तो चार महीने में 3,886 छात्र वीजा मामलों को अंतिम रूप दिया गया है। माइकल बताते हैं कि रिव्यू किए गए 50% मामलों में फैसला बदला गया है, जहां मामले को पुनर्विचार यानी रिकंसिडरेशन के लिए मूल निर्णयकर्ता के पास वापस भेज दिया गया था। इस मामले को गहराई से समझने के लिए आज हम जुड़े हैं दीप्ति अरोड़ा के साथ।
मैं ऑस्ट्रेलिया में एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट हूं और मैं यहां पे सिंस 2009 मैं यहां पे एज अ रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट काम कर रही हूं, जिसमें हम लोग काफी ज्यादा माइग्रेशन के साथ और एजुकेशन रिलेटेड जो है वीजाज और उनके ऊपर काम करते हैं। क्योंकि हम लोग रजिस्टर्ड होते हैं तो हम हर तरह के वीजाज जो हैं उनमें लोगों को जानकारी दे पाते हैं और जो हमारी जानकारी होती है वो एज पर जो ऑस्ट्रेलियन लॉज या ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होती है, ताकि जब आपको कोई भी केस ऑफिसर या आपको कोई भी जो भी आपका वीजा जो है प्रोसेस करते हैं या असेस करते हैं उनके मुताबिक जिन लॉज को वो यूज करते हैं वही लॉज जो हैं हम उनके बारे में आपको उसके अतिरिक्त हम आपको एडवाइज करते हैं।
दीप्ति, स्टूडेंट वीजा प्रोसेस में हाल ही में काफी सारे बदलाव देखे गए हैं, तो ये बदलाव आखिर क्या हैं?
जी, जो लेटेस्ट बदलाव मैं जिसके बारे में बात करूंगी वो अभी 14 नवंबर को ही आया है, जो कि प्रोसेसिंग प्रायोरिटी के बारे में है और ये जो मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 115 चेंज हुई है, तो ये बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ कि ऑफशोर के क्लाइंट्स के लिए, ऑफशोर के क्लाइंट्स वो होते हैं जो अभी ऑस्ट्रेलिया में नहीं है और जिन्होंने यहाँ पे वीजा लगाना है ऑस्ट्रेलिया में अभी और यहाँ पे आना है, तो ये बदलाव जो है मेनली उनके लिए है. बट इसमें उन्होंने प्रायोरिटी के हिसाब से तीन कैटेगरीज में स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया है. जब मैं प्रायोरिटी कह रही हूँ तो प्रायोरिटी उनके वीजाज को लेकर होगी, मतलब कि जो उनकी वीजाज की प्रोसेसिंग होगी, जो वीजाज की असेसमेंट और प्रोसेसिंग होगी उसमें वो प्रोसेसिंग का वेटिंग टाइम या फिर उस प्रोसेसिंग का टाइम कितना रहेगा, वो चेंजेस जो है वो इन्होंने 14th of November को अंडर न्यू डायरेक्शन जो है वो चेंज किए हैं. अब जो प्रायोरिटी वन की एप्लीकेशन हैं, अगर मैं आपको बहुत ब्रीफली थोड़ा सा बताऊं तो उसमें प्रायोरिटी वन की एप्लीकेशन जो हैं वो बिटवीन 1 to 4 weeks प्रोसेस हुआ करेंगी, प्रायोरिटी टू की एप्लीकेशन जो हैं वो 5 to 8 weeks हुआ करेंगी और प्रायोरिटी थ्री की एप्लीकेशन बिटवीन 9 to 12 weeks हुआ करेंगी.
तो स्टूडेंट वीजा वेटिंग टाइम आप कह सकते हैं कि इसके लिए मतलब अनुमानित ये कितना है, ये आपके प्रायोरिटी के आधार पर पता चलेगा, लेकिन कोई स्टैंडर्ड वक्त भी है?
जो मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट वीजा की किसी भी एप्लीकेशन को लगेगा वो बिटवीन 3 to 4 months ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, स्पेशली ऑफशोर स्टूडेंट्स के लिए. बाकी जो ऑनशोर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी फैक्टर डिपेंड करते हैं, उन सेक्टर्स में बहुत सी चीजें आती हैं कि वो कौन से सेक्टर में उनका इनरोलमेंट हुआ है और उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तो नहीं है जो कि पिछली जो उन्होंने वीजा एप्लीकेशन लगाई थी उसके साथ वो मिसमैच कर रहा है, या उसका कोई भी उस एप्लीकेशन उस डॉक्यूमेंट की रीचेकिंग के लिए उनको डॉक्यूमेंट जो है वो वापस आपकी कंट्री में भेजना पड़ रहा है. तो उसके लिए बहुत से फैक्टर्स डिपेंड करेंगे ऑनशोर स्टूडेंट्स के लिए. ऑफशोर स्टूडेंट्स के लिए मैक्सिमम जो है वो बिटवीन 3 मंथ्स टू 4 मंथ्स का मैक्सिमम टाइम रहेगा.
एक चीज पूछना चाहूंगी कि यदि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं अपनी प्रोफाइल किस तरह से मजबूत कर सकती हूँ या किन बातों का मुझे ध्यान रखना चाहिए आवेदन करते समय?
अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं स्टूडेंट के लिए वो यही है कि आपको पहले इनरोलमेंट लेनी है, आपके पास इनफ फंड्स होने चाहिए, आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए और आपका इंग्लिश का एक मिनिमम लेवल होना चाहिए जो कि डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया हुआ है. आपका हेल्थ और करेक्टर जो है वो मतलब आप उसको पास करते हुए होने चाहिए. बाकी जो मेन चीज है किसी भी स्टूडेंट वीजा में, अगर आपने अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसमें मेन चीज आपकी ऑनशोर स्टूडेंट के लिए जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट रहती है. इसी तरह ऑफशोर में इसको डिफरेंट नाम से, जिसको कि हम SOP बोलते हैं, तो वो आपको बहुत स्ट्रांग करनी होती है. और इसमें वो चीज डिपेंड करती है आपकी जेन्युइन स्टूडेंट जो है या आपकी जो SOP है वो 4 चीजों पे डिपेंड करती है. पहला कि आपने ऑस्ट्रेलिया को ही क्यों चूज किया है एज एन योर कंट्री ऑफ स्टडी, तो आपका डेस्टिनेशन जो है स्टडी का वो ऑस्ट्रेलिया ही क्यों रहा है. अगर ये कोर्स आपके मतलब आपके कंट्री में था या और कंट्रीज में भी डिलीवर हो रहा है तो फिर आपने वहां पे ये कोर्स क्यों नहीं किया और इससे आपको फ्यूचर बेनिफिट क्या रहेगा इस कोर्स को करने से. तीसरा फैक्टर कि आपकी क्या सब्सटेंशियल टाइज है, मतलब आपको इस कोर्स को करने के बाद आपकी आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या रहेंगे और आपकी क्या इंटेंशन रहेगी वापस रिटर्न करने की आफ्टर डूइंग दिस स्टडी. और फिर अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि हायर एजुकेशन के लिए, जो पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च स्टडी के लिए या मास्टर्स के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, तो जो आपने ग्रेजुएशन लेवल पे स्टडी की है उसकी रेलेवेंसी किस तरह से मीट करती है आपकी फ्यूचर स्टडी के साथ. ये एक जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट या आप इसे कह लें कि एक रिक्वायरमेंट रहती है जो कि बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए अगर आपको अपनी वीजा एप्लीकेशन, जो स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन है उसको स्ट्रांग करना है. तो दूसरा चीज जो होती है वो फंड्स होते हैं आपके, कि आपके फंड्स जो है वो किस तरह के हैं, मतलब डू यू हैव जेन्युइन फंड्स, कि आपके जो आप फंड डिपार्टमेंट को अपने फाइनेंशियल फंड दिखा रहे हैं वो एक जेन्युइन, उनकी जेन्युइन एक्सेस है आपके पास, मतलब कि आपने एफिडेविट्स एंड सपोर्ट डिक्लेरेशन सपोर्ट्स लगाई हैं साथ में. और उन जो वो फंड्स हैं आपके पास, अगर वो आपके पेरेंट्स ने दिए हैं या किसी ने भी, किसी थर्ड पार्टी ने दिए हैं, तो उन फंड्स का सोर्स क्या था, वो फंड्स जो हैं वो किसी की सैलरी से वहाँ पे अक्यूमुलेट हुए हैं उन अकाउंट्स में, या वो किस तरह से वो फंड्स जो हैं वो वहाँ पे आए हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं अगर आपने अपनी स्टूडेंट वीज़ा की फाइल बहुत स्ट्रांग करनी है फ्रॉम द फर्स्ट साइट ऑफ इट, कि केस ऑफिसर जब उसको असेस करने लगे या देखने लगे तो दे हैव अ वेरी गुड आइडिया।
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
You exactly know aapke, why you are coming here in Australia as a student.
तो दीप्ति, आज आपका SBS हिंदी से जुड़ने के लिए और हमें इस संदर्भ में और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद आपकी सभी ऑडियंस को। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया सो देट आई कैन एक्सप्लेन कि स्टूडेंट वीजा के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं।
आपको बता दूं कि इस अंश में प्रस्तुत की गई जानकारी सामान्य है। विशेष जानकारी के लिए आप अपने रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। SBS न्यूज के लिए इस खबर को आप सबके सामने SBS हिंदी में लेकर आए भव्या पांडे।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.